पिछले 45 मिनट से यशवर्धन का लाइव इंटरव्यू चल रहा था। वो बेहिचक उसके सारे सवालों के जवाब दिए जा रहा था। लेकिन जब वैदेही ने लाइव इंटरव्यू के दौरान उससे उसके हमलावरों का नाम पूछा, तो यशवर्धन ने ब्रेक लेने का इशारा दिया। उसके वैसा करते ही वैदेही को तुरंत ब्रेक अनाउंस करना पड़ा। इज एवरीथिंग फाइन मिस्टर सिंह? आपने इस तरह इंटरव्यू बीच में क्यों रुकवा दिया? आपने तो कहा था कि आप सभी सवालों के जवाब देंगे, वैदेही ने पूछा। यशवर्धन के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने अपने गुस्से को काबू करके धीमी आवाज में कहा, आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं वैदेही जी? क्या करने से आपका मतलब? मैं तो बस आपका इंटरव्यू, वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले, यशवर्धन ने वैदेही की बात को बीच में काटते हुए कहा। मासूम मत बनिए, हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। इतनी देर से हम धैर्य से काम ले रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इस इंटरव्यू के बहाने अपने मन की भड़ास निकाल रही हैं। किस बात की भड़ास? आप अच्छे से जानती हैं किस बात की भड़ास। हमने आपको उस दिन हमलावर का नाम बताने से मना कर दिया था, तो आज आप जानबूझकर सबके सामने हमसे पूछ रही हैं ताकि हमें जवाब देना पड़े। हम अभी भी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये सब मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ओ, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यशवर्धन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और प्यार से समझाने की कोशिश की। देखिए वैदेही, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब मत पूछिए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। मैं मेरा देख लूंगी, अभी 10 सेकंड में इंटरव्यू फिर से शुरू होने वाला है। आप सोच लीजिए कि आपको क्या जवाब देना है। मतलब आप नहीं रुकेंगी? यशवर्धन ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन वैदेही ने उसकी बात पर नामे सर हिला दिया। वो दोनों आगे कुछ बात कर पाते उससे पहले कैमरामैन ने इंटरव्यू फिर से शुरू करने का इशारा किया। हर बार की तरह ऑडियंस का फिर से वेलकम करके वैदेही ने अपने सवाल को दोहराया। हाँ तो यशवर्धन जी, क्या आप बताएंगे कि आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो किसने करवाया था? आपको किसी पर डाउट है? यशवर्धन ने अपने गुस्से को काबू करके चेहरे के भाव को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैदेही जी, हम किसी का नाम लेकर उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाहते। पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहा है। पीठ पीछे कौन दुश्मनी पाले बैठा है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमें किसी पर शक नहीं है। दूसरी तरफ रामचरण त्यागी ने जब यशवर्धन के मुंह से इस सवाल का जवाब सुना तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। बस यही वजह है यशवर्धन कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। भले ही तुम्हारे दिल में हजारों बातें चल रही होंगी, लेकिन बात को कैसे संभालना है वो तुम्हें अच्छे से आता है। अगर राघवेंद्र ने पार्टी की स्थिति को मजबूत नहीं बनाया होता तो मुझे कोई दो राय नहीं थे कि तुम एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हो, त्यागी जी ने कहा। वहां उनके साथ पार्टी में ऑफिस में दो और भी लोग मौजूद थे जो उनके साथ यशवर्धन का इंटरव्यू देख रहे थे। वहां मौजूद एक और नेता माया देवी ने कहा, पसंद तो हमें भी बहुत है यशवर्धन, लेकिन अभी उसे राजनीति में आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। अभी तो वो बच्चा है और उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। माया जी सही कह रही हैं त्यागी जी, अगर इस बार राघवेंद्र को मौका दे दिया तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि उसके साथ और भी राज्यों में हमारी पैठ मजबूत हो जाएगी, वहां मौजूद दूसरे नेता ने माया देवी का समर्थन करते हुए कहा। अब ये फैसला तो हम आप विधायकों पर ही छोड़ेंगे, देखते हैं आप लोग किसे चुनते हैं। हमारे लिए तो ये निर्णय लेना मुश्किल होगा। राघवेंद्र किसी की सुनने को तैयार होगा तो वहीं अगर हमने यशवर्धन को पीछे रखा तो फिर उसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करते देर नहीं लगेगी। हमने इस बारे में बहुत सोचा और यही सही लगा कि हम अपनी तरफ से दोनों को ही अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेंगे, त्यागी जी ने अपना फैसला सुना दिया। उन दोनों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर वापस अपनी नज़र टीवी स्क्रीन पर गड़ा ली। इंटरव्यू खत्म होने में अभी 10 मिनट ही बचे हैं, मेरे सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। अब मैं व्यूअर्स से कुछ चुनिंदा सवालों को पूछने जा रही हूँ, बोलते हुए वैदेही ने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की जहाँ पर काफी लोगों के सवाल आए हुए थे। हमें उम्मीद है कि आप और जनता हमारे जवाबों से संतुष्ट हुई होगी, यशवर्धन ने औपचारिक तरीके से कहा। ज्यादातर लोगों ने यही सवाल पूछा है कि आप सिंगल हैं या कमिटेड। वैदेही इस सवाल को स्किप करना चाहती थी लेकिन इतनी ज्यादा बात पूछे जाने की वजह से उसे वो सवाल पढ़ना ही पड़ा। फिलहाल तो सिंगल हैं और कमिटेड होने का कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऐसी मिली जो हमें चैलेंज करने वाली हो तो हम पूरी लाइफ उनके चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, यशवर्धन ने वैदेही की तरफ देखकर कहा। उसका इशारा वैदेही की तरफ ही था। क्या पॉलिटिशियंस भी लाइन मारते हैं? यशवर्धन का जवाब सुनकर देव धीरे से बड़बड़ाया। लगता है सर को कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस लेने का शौक है, वैदेही ने उसकी बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने ऑडियंस के पूछे हुए काफी सवालों को पूछा जिनमें ज्यादातर लोगों ने यशवर्धन की पसंद नापसंद के बारे में पूछा था। यशवर्धन ने भी खुशी से उन सब का जवाब दिया। 1 घंटे पूरे होने के बाद वैदेही ने उस इंटरव्यू को वहीं खत्म करते हुए कहा, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा यशवर्धन जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया,
अब इजाजत दीजिए, मैं वैदेही रघुवंशी मिलती हूँ आपसे प्राइम टाइम पर ठीक 9 बजे, जहाँ हम एक और रात से पर्दा उठाएंगे। इसी के साथ इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। वैदेही के इंटरव्यू खत्म होने का अनाउंस करते ही अनंत देसाई सबके सामने आया और बोला, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे साथ जुड़े। ये इंटरव्यू काफी अच्छे से हुआ। वैदेही जी, आपका धन्यवाद जो आप इस इंटरव्यू लेने के लिए आई। हम देख रहे हैं कि आप लोग दोपहर से कड़ी मेहनत कर रहे थे। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की गई है जो कि गार्डन एरिया में है। आप अपना काम समेट कर वहाँ पार्टी एंजॉय कीजिए, हम भी आपको ज्वाइन करते हैं, यशवर्धन ने कहा। पार्टी अनाउंस होने की वजह से सब काफी खुश थे। रात के 8 बज गए थे और काम समेट कर सभी गार्डन एरिया में इकट्ठा हो गए थे, जहाँ यशवर्धन ने उन सबके लिए काफी अच्छी अरेंजमेंट्स की थी। वैदेही देव के साथ थी, जबकि नरगिस यशवर्धन के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। देखा ना कितनी चालाकी से उसने हमारी बात को टाल दिया, वैदेही ने यशवर्धन की तरफ देखकर बोला। जितना हमने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा चालाक है। इसकी बातों से तो अब मुझे इस पर और भी डाउट हो रहा है मैम, जरूर दाल में कुछ काला है, देव ने जवाब दिया। और ये लोग उस काली दाल को इतनी आसानी से चखने नहीं देंगे देव, हमें इसी के अंदाज में इसे टैकल करना होगा। मैम, आपके प्राइम टाइम के शो का टाइम हो रहा है, प्रतीक सर की भी बार बार कॉल आ रहे हैं, उन्होंने आपको तुरंत ऑफिस में आने के लिए बोला है, देव ने वैदेही का मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, जो कि इंटरव्यू के दौरान उसी के पास रहता था। हाँ चलते हैं, वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं था, वैदेही ने जवाब दिया और वहां से जाने लगी। यशवर्धन ने जब वैदेही को जाते हुए देखा तो वो जल्दी से उनके पास गया। आप लोग इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं, क्या आपको पार्टी अच्छी नहीं लगी, उसने उन्हें रोकते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं है सर, एक्चुअली मेरा प्राइम शो शुरू होने वाला है, वो भी लाइव होगा तो मेरा वहां रहना जरूरी है। बाकी आपने इतने सारे अरेंजमेंट्स के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच, वैदेही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप काफी देर से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, आपने ठीक से खाना तक नहीं खाया। आप कहें तो हम प्रतीक जी से बात करें, अगर आज का शो कैंसिल हो सके तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, और यकीन मानिए आज काफी कम काम था, हमारा क्या है, हम तो दिन रात लगे रहते हैं, वैदेही ने रुकने से मना कर दिया।
लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में, यशवर्धन ने देव की तरफ देखकर बोला, जो कि उसके लिए एक साफ इशारा था, वो उस वक्त उन दोनों के बीच उसे नहीं चाहता था। ठीक है, आप लोग बात कीजिए मैम, मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, देव ने स्थिति भांपते हुए कहा और वहां से चला गया। प्लीज वैदेही जी, बस 5 मिनट, यशवर्धन ने एक टेबल की तरफ इशारा किया। बस 5 मिनट, बोलते हुए वैदेही ने अपने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर लगाकर यशवर्धन को दिखाया। उसके ऐसा करने पर यशवर्धन के चेहरे पर हंसी के भाव थे, जिसे वो काबू करने की कोशिश कर रहा था। यशवर्धन ने भी उसकी बात पर हामी भरी और उसे सामने लगी टेबल पर ले गया। उसने वेटर को खुद स्टार्टर लाने का इशारा किया, जिस पर वैदेही ने कहा, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है सर, मुझे नहीं लगता कि वो आप स्टार्टर खाने में वेस्ट करना चाहेंगे, ये मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए मंगवाया है, मेरी बात सुनते हुए आप कुछ तो खा ही सकती हैं, अब मना मत कीजिएगा, आप ऐसे ही यहाँ से चली जाएंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दोनों टेबल पर बैठे थे, जहाँ वैदेही कुछ स्टार्टर ट्राई कर रही थी, यशवर्धन उसे खाते हुए देख रहा था। आपको चाहिए, वैदेही ने उसे ऑफर किया, जिस पर यशवर्धन ने नामे सर हिला दिया। मुझे नहीं लगता कि ये 5 मिनट आपने मुझे खाना खाते देखने के लिए तो नहीं लिए होंगे, प्लीज जो भी है जल्दी कहिए, वैदेही ने कहा। हमारी बातें काफी लंबी हैं, ये 5 मिनट में खत्म नहीं होने वाली, हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज एक बार टाइम निकालकर आप हमसे बात करना चाहेंगी, यशवर्धन ने पूछा। नहीं, बात बहुत जरूरी है। तब भी नहीं, वैदेही ने साफ मना कर दिया। क्या आप नहीं जानना चाहेंगी कि हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं, यशवर्धन ने एक बार फिर पूछा। ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, आपको टाइम भी दूंगी, लेकिन बशर्ते आपको मुझे उस इंसान का नाम बताना पड़ेगा जिस पर आपको डाउट है कि उसने आप पर हमला करवाया था। आपके 5 मिनट खत्म हो गए हैं वैदेही जी, यशवर्धन ने बात को टालते हुए कहा। इसका मतलब आप मुझे नहीं बताएंगे, वैदेही के पूछने पर यशवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब उसे साफ समझ आ रहा था। वैदेही टेबल से खड़ी हुई, तभी यशवर्धन ने एक व्यक्ति को इशारा करके अपने पास बुलाया। उसके हाथ में खाने का टिफिन था। यशवर्धन ने उसे वैदेही को पकड़ते हुए कहा, आपके साथ मुलाकात अच्छी रही, हमने सोचा था कि आप पार्टी के बाद यहाँ रुकेंगी तो हमारे बीच के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, लेकिन हम भूल गए थे कि आप बहुत बिजी रहती हैं, आपके साथ जो आए थे उन्होंने कुछ नहीं खाया है, और हमारे पापा कहते थे कि घर आए मेहमान को कभी भी भूखा नहीं भेजना चाहिए, आप उन्हें ये दे दीजिएगा। इस बार यशवर्धन की बातों ने थोड़ा ही सही लेकिन वैदेही को इम्प्रेस कर दिया था। उसने थैंक यू बोलते हुए उसके हाथ से वो टिफिन लिया। बस 1 मिनट और दीजिए, यशवर्धन ने कहा और जल्दी से अंदर गया। लौटते वक्त उसके हाथ में एक बुके था, उसने उसे वैदेही को दिया और कहा, उस दिन हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। बुके और टिफिन लेने के बाद वैदेही वहां से जा चुकी थी, लेकिन इस चक्कर में उसका इस बात पर ध्यान नहीं रहा कि बुके और टिफिन संभालने के चक्कर में उसका फोन नीचे गिर चुका था। उसके जाते ही यशवर्धन ने वो मोबाइल उठाया और अपने मन में सोचा, आप खुद तो हमारे पास कभी नहीं आना चाहेंगी वैदेही, लेकिन आपकी ही चीज आपको फिर हमारे दर ले ही आएगी, यशवर्धन ने एक मुस्कुराहट के साथ उस मोबाइल को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया।